तो इस सेशन के लिए हमारे जो वरिष्ठ हैं, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो चंद्रिका दीदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो इतने सालों से हम यंग के साथ डील करती हैं, वी यंग माइंड्स एंड शी इज अवर मोटिवेशनल पावर। तो मैं सबसे पहले चंद्रिका दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी, साथ ही साथ मैं एएस पटेल भाई जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के। साथ ही मैं कृति दीदी को भी आमंत्रित करना चाहती हूं मंच पर, और साथ ही साथ अशोक भाई, उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे सवालों के जवाब दें। सो विथ वेविंग अवर हैंड्स, यस, इन अ साइलेंस फॉर्म वी विल जस्ट वेव हैंड्स। In this journey, I have with me my spiritual sister, my spiritual friend, Shweta Bhen. हम दोनों मिलके आपके सवाल मंच आसीन सभी वरिष्ठ के सामने रखेंगे, एंड होप टूडे यू गेट द आंसर। हमारे साथ आज हमारे इस जर्नी में हमारे इंजन बनकर जो साथ में चलते हैं, कहा जाता है सीधा चलना है तो एक इंजन काफी है ट्रेन के लिए, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ना है तो कितने इंजन चाहिए? एक से ज्यादा, यानी दो इंजन चाहिए। एंड वी आर हैविंग फोर इंजन्स विद अस, तो डेफिनेटली हम सफलता की उस चोटी पर जा सकते हैं, एक नया सफलता का परिभाषा बना सकते हैं जो आज तक शायद विश्व में किसी ने नहीं देखा। तो आज हमारी इस यात्रा में हमारे साथ एएस पटेल जी हैं, जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, जो एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के, और जो यूथ के साथ हर रोज बिताते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ है चंद्रिका दीदी, जो हम यंग माइंड्स के साथ मोटिवेशनल फोर्स बनकर 85 से हैं, जिनको देखकर कभी हमें ऐसा लगता है कि हम यूथ कब बनेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ कृति दीदी हैं, जो पिछले 40 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और 35 ईयर्स से डेडिकेटेड रूप से सेवाएं दे रही हैं, और यूथ विंग की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर भी कह सकते हैं, मोटिवेटर भी कह सकते हैं। और मैं कई ऐसे यंग भाई बहनों को जानती हूं जो पर्सनली मुझे कहते हैं शी इज द गाइड बिहाइंड अस। तो ऐसी विशेष व्यक्तित्व, और साथ ही साथ अशोक भाई जो 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, बाय प्रोफेशन वो बिजनेसमैन हैं जो ट्रैवल का बिजनेस संभालते हैं, तो उनको बिजनेस फ्रंट का और यंग लोगों के साथ डील करने का बहुत मौका मिलता है। तो ऐसे हमारे साथ विशेष वक्ता हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी पटेल भाई जी से, आप बहुत सारे यंग भाई बहनों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा चैलेंजेस आज हम यंग बच्चों के साथ आता है? व्हाट आर द चैलेंजेस वी यंग पीपल फेस टुडे?
मोस्टली વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે એડમિશન ઓકે જબ યુવા લોગ મેરી પાસ આતે હૈ એડમિશન કે બાદ એડમિશન જબ હોતા હૈ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ મે તબ વો ગાઈડન્સ લેને કે લિયે આતે હૈ વો પૂછતે હૈ કે કૌન સી લાઈન મે હમ જાય કૌન સા હમ વો પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કરે કે જિસમે હમ ઇસકા નિષ્ણાત બને તો મેં એ લોકો કો એ ચેલેન્જ હૈ ક્યા બનના વો કૈસે ડિસાઈડ કરના વો ભી એક ચેલેન્જ હૈ તો મેં સબકો પૂછતા હું કે આપકો ક્યા ઇન્ટરેસ્ટ હૈ તો બોલતે હૈ વો ઇનો કે પાસ વો ડાર્ક જૈસા પિક્ચર હોતા હૈ ઉસ વક્ત ઉનકો પતા ભી નહીં હૈ કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ક્યા હૈ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્યા હૈ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ક્યા હૈ ઓર વો બોલતા હૈ કે કૌન સી લાઈન મે જાઉં તો એ એક ગ્રેટ ચેલેન્જીસ હૈ જબ આપકો કુછ ભી બનના હૈ તો પહેલે આપ યુ એક્ઝામિન યોર સેલ્ફ મેં ઇનકો બોલતા હું કે આપકો જિસમે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ ઇસમે આપકો જાના જરૂરી હૈ તો આપ સક્સેસ હોંગે ઇસમે ઓર એ ચેલેન્જ કો આપ પાર કર સકેંગે દૂસરા મેં બતાઉં કઈ બાર અપના ફેમિલી સર્કમસ્ટન્સીસ કે ભી પ્રોબ્લેમ હોતે હૈ એક લડકા કો મેરે કા એક એક્સપિરિયન્સ હૈ જબ મેં હિંમતનગર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ મે થા તો એક લડકા એક દિન મેરે જો ઓફિસ કા ટેબલ થા ઉસકે આને કે બાદ ઇતના રડને લગા તો મેને બોલા કે બેટા પહેલે શાંત હો જા તેરા ક્યા પ્રોબ્લેમ હૈ મેરે કો બતા દે ઉસને બોલા કે મેરે કો એન્જિનિયર બનના હૈ મગર મેરા ઘર કા એટમોસ્ફિયર ઇતના કલુષિત હૈ કે મેં નહીં બન પાઉંગા ઓર મેં મેરા ઘર કા જો એન્વાયરમેન્ટ હૈ મેં દેખ હી નહીં પાતા મેરે કો તો બસ મરના હી મરના હૈ મેરે કો કુછ ભી કરના નહીં હૈ મેને બોલા પહેલે શાંત હો જા તેરી સમસ્યા કા હલ જરૂર નિકલેગા તુ સમસ્યા બતાયેગા તો હલ નિકલેગા કારણ કે આપકો એન્જિનિયર બનના હૈ આપકે સામને ચેલેન્જ હૈ આપ જરૂર બનેગા મગર ક્યા સમસ્યા હૈ મેરે કો બતા દે બોલા કે દેસ સાહેબ મેં આપકે સામને વો એક્સપ્લેન નહીં કર સકુંગા વો એસા સમસ્યા હૈ મેરે ફેમિલી કા કે મેં આપકે સામને કુછ ભી નહીં બોલ સકુંગા મેને બોલા કે જો તુ નહીં બતાયેગા તો તેરા સમસ્યા કા કોઈ હલ નહીં હોગા સમસ્યા કા હલ નહીં હોગા તો એન્જિનિયર નહીં બન પાયેગા તો ક્યા કરના હૈ તેરે કો યુ ડિસાઈડ બાદ મેં ઉસને બતાયા પ્રોબ્લેમ તો ઉનકા જો મધર ઓર સિસ્ટર થા એક પત્રકાર કે વો ઇસમે આ ગયા થા ઓર ફેમિલી કા ઇતના એટમોસ્ફિયર ખરાબ હો ગયા થા કે વો બોલતા થા કે મેં દેખ હી નહીં પાતા થા મેને બોલા કે ક્યું એસા હો રહા હૈ આપ એક્ઝામિન કીજીએ તો બોલ રહા કે પૈસા કા મામલા એ કરતા હૈ સબ કુછ મેને બોલા કે આપ એન્જિનિયર બન જાઓ આપકા વો ફેમિલી પ્રોબ્લેમ ભી સોલ્વ હો જાયેગા બોલા કે મગર પૈસા મેને બોલા કે ફેમિલી કે પાસ જરાય ડિમાન્ડ નહીં કરને કા આપકો જબ જબ પૈસા કી જરૂરત હો જાય તો મેરી પાસ આ જાના મેં પુસ્તક ભી દિલવા દૂંગા આપકા ફીસ ભી ફિકર દૂંગા ઓર આપકા જો કઈ પ્રોબ્લેમ હૈ ઇધર હમ સોલ્વ કર દેંગે વો ડિપ્લોમા એન્જિનિયર બન ગયા ડિપ્લોમા એન્જિનિયર બનને કે બાદ વો દો તીન સાલ કે બાદ મેરે ઘર પે આયા એક છોટી સી ગિફ્ટ લેકે આયા વો બાપાલાલ ન વૈદ્ય કે જો પુસ્તક થે વો આયુર્વેદિક પુસ્તક થે ઉસકો પતા થા કે સાહેબ તો કુછ લેને વાલે નહીં હૈ ફિર ભી એક છોટી સી ગિફ્ટ મેં દૂંગા તો વો સ્વીકાર કરેંગે તો અચ્છા હૈ મેને વો સ્વીકાર કર લિયા ઉસ બાદ મેં ઇસકો બોલા કે અભી ક્યા હૈ ફેમિલી કા પોઝિશન તો ઉસને બોલા કે ફેમિલી કા એટમોસ્ફિયર એકદમ ચેન્જ હો ગયા હૈ ઓર નાઉ આઈ એમ વેરી હેપી ઇન માય લાઈફ દેખો એટલે પ્રોબ્લેમ તો જો ચેલેન્જ કે સાથ જો પ્રોબ્લેમ ભી આયેંગે મગર પ્રોબ્લેમ કા સોલ્યુશન તબ નિકલતા હૈ જબ યુ એક્ઝામિન યોર સેલ્ફ આપ કિસી કો નહીં બતાયેંગે તો ઇસકા હલ નિકલને વાલા નહીં ઓર એ જો કુછ હમ કર રહે હમારા જો સોચ હૈ વો બિલકુલ સ્પિરિચ્યુઅલ કે સાથ કનેક્ટેડ આપ દેખો મેં સબકો બોલતા હું મેરે જો જીતને ફ્રેન્ડ મેરે કો મિલતે હૈ કે યે પ્રોબ્લેમ હૈ વો પ્રોબ્લેમ હૈ મેં ઇસકો હી બોલતા હું કે સુબહ મે જબ આપકી જો ઉઠો ઉઠને કે બાદ 10 મિનિટ કમ સે કમ ભગવાન કા નામ તો લો યુ મેક યોર માઇન્ડ પીસફુલ એન્ડ દેન યુ સ્ટાર્ટ યોર વર્ક આપકા પૂરા દિન અચ્છા જાયેગા मगर मैंने देखा है युवा लोगों को जब जब हम ये बात करते हैं तो वो वही बोलते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास।
सही बात है, थैंक यू वेरी मच।
तो वो ठीक नहीं है, टाइम है मगर करते नहीं आप लोग।
यस थैंक यू। मैं अगला सवाल कृति बहन से करना चाहूंगी। आप निर्मला यूनिवर्सिटी में बहुत समय से वहां जाती हैं, वहां यंग को ट्रेनिंग देती हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूं कि जो यंग बच्चे हैं वो बेसिकली किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लाइफ में, जिसके कारण जैसे अभी पटेल भाई जी ने कहा कि हम अपने पथ से अलग हो जाते हैं, तो व्हाट इज दैट विच इन्फ्लुएंस अस इन आवर लाइफ।
यंग एज में जहां तक मैंने देखा है भावना अधिक होती है और इमोशंस से हम ज्यादा चलते हैं। आजकल के समय में इन्फॉर्मेशन बहुत होने के कारण एक मानसिकता ये बनती जाती है कि हमें सब कुछ मालूम है और हम सब कुछ जानते हैं। अनुभव एक चीज होता है, इन्फॉर्मेशन दूसरी चीज होती है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है और हम इमोशन से चल जाते हैं। और इसीलिए जो भी वायुमंडल हमें ज्यादा समय मिलता है संघ के हिसाब से, चाहे वो उठना बैठना हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रुप में इधर उधर आना जाना हो, जिस प्रकार के फ्रेंड्स और जिस प्रकार के वायुमंडल के बीच आप अधिक समय बिताते हैं वे चीजें आपको प्रभावित ज्यादा करती है। और दूसरी यंग एज में वो चीज प्रभावित करती है जो हमें सपोर्टिव और सहानुभूति देने वाली होती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे किसी भी रूप में। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है छोटा है वो सब उस समय भूल जाता है, लेकिन जो सपोर्ट करता है, आपको लगता है वो व्यक्ति आपको अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनको आपके लिए कंपैशन है, सहानुभूति है, तो ऐसी व्यक्तियों की तरफ हमारा मन बहुत सहज ढल जाता है। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि यूथ सिर्फ वो इमोशन से चलते हैं, इसीलिए उनका यूज कर लिया जाता है और यूज करने के बाद फिर उन्हों की कोई जगह नहीं रहती है और ऐसे समय पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन यूथ के अंदर आता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर हम प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे, कैसे फ्रेंड्स के बीच हैं, कैसी वेबसाइट्स के साथ हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये कुछ चीजों को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम खुद ही समझ पाएंगे कि जिन चीजों के बीच हम हैं क्या वो हमारे मॉरल डेवलपमेंट के हिसाब से, एक आइडियल सिटीजन के हिसाब से वो मुझे प्रगति की ओर ले जाएंगे या नहीं। मैं समझती हूँ आज के यूथ इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं।
थैंक यू कृति दीदी। इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज के समय पर जहाँ हमारे पेरेंट्स वर्किंग है, बहुत कम समय मिलता है हम सबके साथ स्पेंड करने का, शेयर करने का, तो ऐसे समय में जब कभी हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम उसके समाधान के लिए किसी न किसी को ढूंढते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा गाइड या कौन सा फ्रेंड हमारे लिए सच्चा समाधान दे सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हमें समस्याओं से बाहर निकाल सकता है उसकी पहचान क्या होगी, ये चंद्रिका देवी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे पता लगाएं कि जो हमें गाइड कर रहा है वो गाइड सही है या गलत है।
अब शांति, अभी का समय तो ऐसा है कि जीवन में बार बार प्रश्न आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, तो सबसे पहले हम स्वयं ही अपना सॉल्यूशन निकाल सके ऐसी हमारी मानसिकता बन जाए उसके लिए अपने को टाइम देना चाहिए। अगर आप पीसफुली अपना ही मित्र आप बन करके एकांत में बैठ करके किसी बात को पीसफुली सोचेंगे तो जो प्रश्न आपके अंदर से उठा है उसका जवाब आपके अंदर ही है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको ये अभ्यास नहीं है और आपसे ये संभव नहीं हो रहा है तो आपके जीवन में माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं जो सेल्फलेस संबंध रखते हैं, आपसे निस्वार्थ संबंध रखते हैं, जिनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है या अपेक्षाएं नहीं है, ऐसे लोगों से खुले दिल से बात करेंगे आप तो आपका सही समाधान मिलेगा। तीसरी बात, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप परमात्मा से जवाब लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट जवाब मिलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में एकदम फ्रेश होकर के, जिनमें ही आपकी श्रद्धा है, आप जिनको भी भगवान समझते हैं, आप उनके सामने बैठ जाइए। एक डायरी में जो आपकी समस्या है वो लिखिए, अक्षरशः ठीक तरह से वो आप लिखिए, और वो लिख करके आप एकदम एकाग्र चित्त से परमात्मा के तरफ से मिलने वाले उत्तर के लिए इंतजार करें। आपको यहां टचिंग आएगी, परमात्मा के तरफ से उत्तर आपके बुद्धि के द्वारा परमात्मा आपको देंगे। जब वो आ रहा है ऐसा लगे तो उसी समय वो उत्तर भी आप लिखना और उसी उत्तर के सहारे चलना, आप बड़े विश्वास के साथ ये प्रयोग करना है, फिर आप देखना कि परमात्मा कितना क्लियर कट जवाब आपको देते हैं। तो हर समस्या का ये सहज उपाय है। ओम शांति।
अभी मैं अशोक भाई जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बहुत से भाई बहनों ने ये क्वेश्चन किया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन भटकता है, मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो मेडिटेशन के द्वारा मन को कैसे एकाग्र करें, नेगेटिव थॉट्स स्टॉप हो जाएं। और कुछ ने ये भी पूछा है कि मुझे चीजें याद रखने में परेशानी होती है तो क्या मेडिटेशन उसमें हेल्पफुल है। कई सारी नेगेटिव बातें जीवन में आती है, नेगेटिव प्रेशर आते हैं, तो क्या मेडिटेशन उसमें हेल्प कर सकता है? अशोक भाई जी,
मेडिटेशन माना परमात्मा से ध्यान लगाना, और उस वक्त व्यर्थ बातें नेगेटिव बातें आती है वो शुरू की स्टेज में होता है, क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं होता है मन को कंट्रोल करने का। लेकिन नेगेटिव बातें आवे नहीं, और मतलब उसके लिए पुरुषार्थ ये करना है कि हमें पॉजिटिव थॉट्स को इमर्ज करना है अपने माइंड्स में, जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति के सागर है, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को लगातार सोचते रहेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स को आने की मतलब मार्जिन ही नहीं रहेंगी। मन को खाली रखेंगे और सीधा सोचेंगे कि मैं परमात्मा से योग लगाए और एकदम डेड साइलेंस की अनुभूति होवे और मन चले ही नहीं, लेकिन मन को धीरे धीरे शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड्स को देने होंगे, और कई प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा से मुझे शांति मिल रही है, परमात्मा से मुझे शक्ति मिल रही है, मैं परमात्मा से प्रेम की अनुभूति कर रही हूँ, इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स को आप लगातार बनाए रखेंगे तो जहां एक चीज होती है वहां दूसरी नहीं आती है, तो मन पॉजिटिव थॉट्स से भरते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। और सबसे पहला योग के लिए हमें अपने आप को इस शरीर से डिटेच होकर अपने को एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना होता है। जहां हम आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा जैसे बताया कि मन बुद्धि और संस्कार की बनी हुई है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। तब जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो मन के ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से और योग मेडिटेशन पावर से मेमोरी पावर अवश्य बढ़ती है, क्योंकि मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और मेमोरी पावर भी बढ़ सकती है और बढ़ती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये हो सकता है। ओम शांति।
थैंक यू अशोक भाई। इन यस्टरडे सेशन दे सेड आवर लाइफ इज डेस्टिनी, देन व्हाई शुड वी ड्रीम। दीदी ये आपसे सवाल करना चाहते हैं, जब मेरा जीवन भाग्य के हवाले है तो फिर मैं सपने क्यों देखूं?
भाग्य जो पास्ट हो जाता है उसके लिए बोला जाता है, भविष्य के लिए एफर्ट होते हैं। मैंने ये एफर्ट किया और मुझे ये प्राप्ति मिली। बिना एफर्ट में इसमें से कोई मुझे खड़े होकर के बताए कि ये मेरा भाग्य है? इज देयर एनीवन? मैं कॉलेज जाऊं नहीं, मैं पढ़ू नहीं और मैं MBBS हो जाऊं, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नो। तो ये भाग्य भविष्य के लिए नहीं है। भाग्य जो कुछ आपने कर लिया और आपको जो मिला, आप कहेंगे ये मेरे भाग्य में था, मुझे मिला। इसलिए पुरुषार्थ ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, प्रारब्ध वो उसका परिणाम है। अंश
अगला प्रश्न कृति दीदी जी से। दीदी एक सवाल आया है कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो तनाव आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्या करें?
सफलता को हम किस एंगल से देख रहे हैं, यहाँ शायद ये सबसे बड़ी बात है। आजकल सफलता फिजिकल टर्म्स में ही गिनती होती है। हमने बहुत अच्छा करियर बना लिया, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, फिर वो चाहे शॉर्टकट से ही कमाया हुआ क्यों नहीं हो, हम बहुत ऊंची पोस्ट पर शॉर्टकट से आ गए हैं। हमारे सफलता का जो मापदंड है वो मापदंड आजकल बदलता जा रहा है, और इसीलिए अगर वो सब नहीं हो पाया तो हम समझते हैं कि हम सफल नहीं हुए हैं। एक्चुअली हम जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, जो भी हमें जो भी कार्य क्षेत्र मिला हुआ है, जिन्हों के बीच है और जैसे भी हैं, अगर हम सबके साथ सुमेल तालमेल बना करके जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन ले पाते हैं तो वास्तव में सफलता की शुरुआत वहां से होती है। अगर मैं ऑलवेज कंप्लेनिंग हूं कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर ऐसे चांसेस मुझे मिले होते तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। अगर ऑलवेज मैं कंप्लेनिंग हूं तो जो मुझे मिला है और जो मुझे मिल रहा है उसका सुख मैं अपने आप को अनुभव नहीं करा सकती हूं, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि हम निष्फल हैं। एक्चुअली ऐसी बात होती नहीं है। कई बार कंपैरेटिवली हम समझते हैं कि उसको इतना इतना मिला, मुझे नहीं मिल पाया है, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। लेकिन अगर कंपैरिजन जिसके साथ करते हैं उसको छोड़ करके आज मैं जो हूं, मुझे जितना चांसेस मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिली हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को मैंने योग्य तरीके से ग्रैब किया है, वो अपॉर्चुनिटीज को मैंने योग्य तरीके से यूज किया है, यही वास्तव में सफलता का पर्याय है। वास्तविक सफलता जिन्हों को भी मिली है उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उनको ट्राई 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 अगेन, इसी प्रोसेस से आगे आकर के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता बढ़ता व्यक्ति सदा सफल बनता है। इसीलिए हमें कभी भी इस प्रकार से डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि कई जगह में मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अभी किसी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, किसी ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया कि एक बिल्डर था, वो जितनी भी स्कीम रखता था वो निष्फल ही होती थी। और उसका एक बेसिक रीजन ये था कि जब वो स्कीम रखता था उसका पहला थॉट ये था कि आज तक एक भी स्कीम सफल नहीं हुई है, इसीलिए अभी ये भी पता नहीं सफल होगी या नहीं। तो जब उससे बात हुई तो उसको केवल एक बात कही गई कि आप 11 दिन तक 10 मिनट्स मेडिटेशन करो कि अब जो मैं नई स्कीम रखने जा रहा हूँ वो सफल होने ही वाली है, पीछे जो बीत चुका वो मेरे बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। उसने 11 दिन बड़ी सिंसियरिटी से वो समय निकाल कर मेडिटेशन किया, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ने काम किया एंड इट वॉज सो वंडरफुल कि उसने जो नेक्स्ट स्कीम लॉन्च की फर्स्ट डे इटसेल्फ 65% बुकिंग उसको मिल गया। इसलिए सफलता हम किस एंगल से देखते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। निष्फलता है ये सोच करके हमें डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डॉक्टर A.S. पटेल जी से एक सवाल है। एक ने पूछा है हाउ मच टाइम शुड ए नॉर्मल पर्सन स्लीप इन ए डे।
अच्छा, जो सोने की बात आती है तो सोने की जो बात है वो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मेरा रूटीन लाइफ क्या है। वो सुबह में 6 बजे मैं जनरली उठता हूं। उठने के बाद मेरा जो क्रिया है वो 1 घंटा चलता है सब कुछ, बाद में भगवान का 10-15 मिनट्स वो मेडिटेशन का हो तो मेडिटेशन और वो जो कहो वो भगवान के सामने मैं बैठता हूँ। वो मेरा माइंड पीस होने के बाद मेरा जो प्लानिंग होता है, जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग करके वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाए वो कर देता हूँ प्लानिंग। और बाद में ऑफिस में जाने के बाद जो मेरा प्लानिंग है वो कई बार डिस्टर्ब भी हो जाता है। डिस्टर्ब ऐसे हो जाता है कि हमने सोचा है कुछ और प्रॉब्लम और कुछ आ जाते हैं, कहेंगे युवा लोगों के साथ काम करना है, तरह तरह के लोग आ जाते हैं ऑफिस में, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। मगर वो एक एक सॉल्यूशन करके शाम को जब मैं घर चलता हूं तो इतना अंदर से आनंद होता है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके घर पे जाता हूं, एक भी प्रॉब्लम मेरे टेबल पर छोड़ के नहीं जाता। बाद में शाम को जाने के बाद जो भोजन लेना है वो ले लेता हूं 7 बजे। बाद में थोड़ा न्यूज वगैरह पढ़ लेता हूं। पढ़ने के बाद टीवी सीरियल भी देखता हूं, मगर अच्छी अच्छी सीरियल जो होती है वो देखता हूं। और इसके बाद मेरा सोने का टाइम है 10 to 10:30, इसके बीच में मैं सो जाता हूं। जब मैं वो सोने के लिए जाता हूं तो 5 मिनट में मेरे को इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो मत, 2 मिनट में भी मैं सो सकता हूं। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक ही वजह है कि पूरे दिन में सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए, जितना कार्य करना चाहिए इतना मैं कर लेता हूं, बाद में कोई स्ट्रेस कुछ भी नहीं रहता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मेरा पोस्ट ऐसा है कि हर लोग मेरे जो कलीग्स है वो लोग बोलते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू विदाउट स्ट्रेस, आपका कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई देता आपके मुंह पर और पूरे दिन आप ऐसे। और कई कलीग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम आपके ऑफिस में आते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो भगवान की देन है। हम जो सोचने लगेंगे कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, मगर जो करना है वो आपको ही डिसाइड करना है। कितने बजे सोना है, आपका काम कितना है, क्या है, वो आपको ही फाइनल करना है। आप आपका जो प्रॉब्लम्स है ना, डोंट लीव ऑन अदर्स, दूसरे को पूछेंगे तो आपको मिसगाइड करेगा वो, कहेंगे इस हर व्यक्ति का जो लाइफ है ना, लाइफ का जो काम करने का तरीका और जो कुछ है वो अलग अलग है। इसीलिए आपको ही डिसाइड करना कितने बजे सोना है, कितना टाइम का क्या यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, यू हैव टू डिसाइड। आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो यही बात है आपके लिए कि जहां जहां प्रॉब्लम्स या कुछ भी आ जाए तो यू थिंक प्रॉपरली, यू सिट अगेंस्ट द गॉड,
थैंक यू,
एंड यू मेक इट प्रॉपर प्लानिंग एंड यू एग्जीक्यूट इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, यही बात है।
थैंक यू वेरी मच। मैं कृति दीदी से सवाल करना चाहूंगी कि अगर मुझे अपने माइंड को रिलैक्स रखना है तो मुझे मैक्सिमम कितना समय रेस्टिंग अपने माइंड को देना चाहिए?
कहने में वैसे ऐसा आता है कि एक एडल्ट के लिए 6 आवर्स की स्लीप इनफ है, लेकिन बेस्ट आवर्स जो सोने के हैं जिसमें आपको मैक्सिमम रेस्ट मिल सकता है, इट इज बिटवीन 10 to 4। स्लीप मैनेजमेंट ये कहती है कि रात को 10 बजे से 1 बजे के बीच में हम जो नींद लेते हैं, वी स्लीप फॉर 1 आवर एंड वी गेट रेस्ट फॉर 2 आवर्स, 10 to 1 के बीच में, और 1 बजे के बाद वी स्लीप फॉर 2 आवर्स एंड वी गेट रेस्ट फॉर 1 आवर। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है बहुत पुरानी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर कोई 10 बजे सोकर के 4 बजे उठता है तो 6 घंटे की नींद है, लेकिन उसको जो रेस्ट मिल रहा है वो काफी लंबा रेस्ट मिल रहा है, और इसीलिए जो जल्दी लोग उठते हैं वो काफी फ्रेश नजर आते हैं। इसीलिए बेस्ट टाइम टू स्लीप इज बिटवीन 10 to 11, बेस्ट टाइम टू गेट अप इज बिटवीन 4 to 5 इफ पॉसिबल, अदरवाइज लेटेस्ट बाय 6, लेकिन 6 घंटे की नींद मैं समझती हूँ एडजस्ट होना अच्छा रहता है, और इससे बॉडी की जो हीलिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है।
सो अगर बहुत समय तक हमको यूथ एज को मेंटेन करना है तो जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। चंद्रिका दीदी जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल आए। एक सवाल ये है, आपने अभी कहा एस यू इन्फॉर्म्ड अस योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ इज कि आप गॉड को लेटर लिखते हैं, तो सवाल ये आया है कि लेटर में क्या लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय इट, इट इज फॉर टुडे और प्रीवियस डेज मैटर, आज के दिन की बात लिखनी है या जो पिछला दिन बीत गया है उसके बारे में लिखे, क्या लिखे भगवान को?
अगर आपको पिछली बातें लिखनी है, आप भगवान से बहुत खुश हो, भगवान आप पर फिदा है, तो आप भगवान को थैंक यू लिखिए। अगर आप पिछली बातें भूल नहीं सकते हो, लाइफ में कुछ ऐसी बातें बनी हुई हैं, आप भूलना चाहते हो, तो आप भगवान को वो बातें लिख दो कि बाबा ये आपको दे दिया, अभी आप उनको संभालो। डेली के लिए मैं लिखती हूँ, मैं रोज के लिए पत्र लिखती हूँ, मैं सुबह आज सारा दिन क्या करना है, आज किन व्यक्तियों से मिलना है, जिन व्यक्तियों से मुझे मिलना है उन व्यक्तियों से मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए, जो कार्य मुझे करने हैं उस कार्यों के अंदर कौन सी दृष्टि रखनी है, आदि आदि प्रश्न मैं पूछती हूँ और भगवान मुझे जवाब देते रहते हैं। भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा मैं पूछती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जैसे समय आता जाता है वैसे लाइन क्लियर होती है। बहुत ज्यादा भविष्य का सोचने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, प्लानिंग किया जाएगा, लेकिन काम तो जब होना है तभी होना है। आप ट्रेन में बैठ गए, अभी बम्बई का स्टेशन, तो जर्नी के एंड में ही आएगा, आपको बम्बई जाना है, तो बाकी सारे स्टेशन तो आपको देखने ही है, आप पहले नहीं देख सकते। इसलिए भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत पूछता रहे भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप होता रहेगा। मैं क्या पूछती हूँ, मैं हर कोई चीज भगवान से कहती हूँ, अगर मेरे शरीर में कोई तकलीफ हुई तो मैं बाबा को लिखती हूँ, बाबा ये है, बाबा मुझे डॉक्टर का नाम सजेस्ट करता है, डॉक्टर के पास जाती हूँ, या बाबा मुझे कोई छोटी मोटे इलाज बता देते हैं तो वो मैं इलाज कर लेती हूँ। मुझे कोई प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है तो मैं पूछती हूँ ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या करना, किससे अप्रोच करना, कैसे बात करना, तो मैं वो भी हूँ। और मुझे सब डायरेक्शन एकदम क्लियर कट मिलते हैं। फिर समझो कि किसी व्यक्ति के मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, कहते बहन जी आप भगवान से बात करते हैं ने, तो आप थोड़ा हमारे लिए पूछ के आएंगे, तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे लिख करके दो, मैं जरूर पूछ के आऊंगी, लेकिन आप खुद ये काम करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो कईयों की फाइल आ जाती है तो वो काम भी कर लेते हैं। और बहुत वंडर ये है कि भगवान हरेक की बात का जवाब देते हैं, आप ये काम करिए आपको बहुत फायदा होगा। मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहती इसलिए, नहीं तो मैं सुना दूं दो तीन बातें ऐसी सुना दूं। मुझे यहाँ हाथ पर एक गांठ सी हुई थी और हमारे घर में डॉक्टर थी तो उसको बोला तो वो मुझे पेन किलर दिया करती थी। 3 मास हुआ, जब जब दर्द हुए वो गोली देवे, फिर आखिर उसने कहा शायद बहन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। फिर मेरे को विचार आया, अरे मैंने क्यों बाबा से नहीं पूछा, तो मैंने एक दिन अमृत वेले बाबा से पूछा, बाबा अभी इसका क्या करना है, अभी तो हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा डॉक्टर राजेंद्र के पास जा, वो ऑर्थोपेडिक है। मैं उसके पास गई, उसने कहा बहन ये तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये गोली इंजेक्शन से नहीं चलेगा। ऑपरेशन करवा लिया, काम हो गया। बजाओ ताली कोई बात। फिर हमने अहमदाबाद में यूथ ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। वो जो प्रॉपर्टी लेने की थी पर वो प्रॉपर्टी बहुत प्रॉब्लम वाली थी, उसके ऊपर सेल टैक्स और इनकम टैक्स और बैंक की आदि आदि बहुत सारी प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टी थी। तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा इस प्रॉपर्टी के लिए सब कहते हैं क्या करना है, लेना है? बाबा ने कहा हाँ बच्ची ये प्रॉपर्टी लेना है। मैंने कहा पर बाबा इसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो बाबा ने कहा वो मुकेश बच्चे को जाकर के मिलो, वो इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, मुकेश बच्चे को बुला लो और वो सारा काम कर लेगा। और इतना आबाद तरीके से वो काम हुआ और आज हमारा वहां ट्रेनिंग सेंटर बन गया। वो ट्रेनिंग सेंटर इतना सुंदर बना हुआ है, उसकी जो आर्ट बनी हुई है तो वो डिजाइन तैयार किया था, उसका सारा फर्मा वगैरह बन गया था, लेकिन उसके लिए कटर मशीन चाहिए, वो मशीन नहीं मिल रही थी। 3 दिन के बाद मुझे जो काम करने वाले भाई लोग थे उन्होंने बोला कि बहन अभी हमारा ये सारा खर्चा फालतू जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कटर नहीं मिल रहा है, हमने सारी दुकानें देख ली, कितनी इंक्वायरी कर ली। मैंने कहा ठीक है कल सुबह देखा जाएगा। सुबह हुई, मेडिटेशन किया, बाबा को कहा बाबा कटर चाहिए, 18 इंच वाला कटर चाहिए। तो अभी मैंने बाबा को मेरी दिनचर्या नहीं लिखी थी, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची तुम आज नरोड़ा ब्रांच में जाने वाली हो, वहां क्लास पूरा करते बोल देना कि ऐसा ऐसा कटर चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि भाई एक अपना ऐसा कटर चाहिए, तो एक भाई क्लास में से खड़ा हुआ, बोला बहन जी मैंने परसों ही ऑर्डर किया है और 48,000 का वो कटर। बोला ठीक है हम एड्रेस चेंज करवाते हैं और बाबा के घर के वहां ही डिलीवरी करवा देते हैं, जब तक यूज करना है करो। और इतना अच्छा वो स्थान बन गया। अब बताओ इतना क्लियर भगवान बताता है, हमको किस बात की फिक्र है? मैं हर छोटी बात बाबा से पूछ लेती हूँ, आप भी पूछो वो जवाब देगा, ना जवाब दे तो मेरे पास आना।
अगला सवाल भी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से। दीदी, जैसा आपने बताया कि भगवान को लेटर लिखना चाहिए, तो एक क्वेश्चन आया है कि राजयोग क्या है, क्या यह भगवान को से बातें करना है, और राजयोग कैसे करना चाहिए, क्या आंखें बंद करके खुली रख के कितना समय करना चाहिए, दिन में कितना समय दिन में भगवान को देना चाहिए, और राजयोग में क्या किसी मंत्र का जाप करना है या मौन रहना है, मन को किस पर स्थिर करना है, विज्ञान और राजयोग का क्या संबंध है, तो ये सारी बातें राजयोग के संबंध में।
योग शब्द का सिंपल मीनिंग है याद। अब हमारे जीवन के अंदर याद हमारा स्वभाव है, नेचर है। अगर आप में से मैं किसी को भी कहूं कि आप कुछ भी याद नहीं करो, तो आप कितने सेकंड रह सकेंगे बिना याद किए, रह सकेंगे? तो जैसे ये ब्रीदिंग वो हार्ट की प्रकृति है, नेचर है, वैसे याद करना ये बुद्धि का नेचर है, वो याद करने बिना रह नहीं सकती हैं। और ये याद का साइंस ऐसा है कि आप जिनको याद करेंगे ऐसा अनुभव करेंगे, आप जैसी याद करेंगे वैसी अनुभूति करेंगे, आप खुशी की बात को याद करेंगे आप खुश हो जाएंगे, आप निष्फलता की बात को याद करेंगे आप दुखी हो जाएंगे। तो हमें राजयोग इसलिए करना है कि हमारे समग्र जीवन का परिवर्तन हो जाए, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाए, हम मानव से देव बन जाए। उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, आप एक आत्मा हो और ये शरीर आपकी मोटर कार है, आपको अपने आप को सदंतर आत्मा समझना है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर के द्वारा काम कर रहा हूं। दूसरा, हम ह्यूमन बीइंग, हमें संबंधों से बहुत प्यार होता है, माँ बाप भाई बहन गुरु बंधु सखा, तो आप भगवान के साथ नाते जोड़ लो, आप उसको पिता बना दो, पुत्र बना दो, मित्र बना दो, टीचर बना दो, सारे संबंध आत्मा के संबंध परमात्मा से जोड़ लो और उनसे बातें करो, बस यही योग है। हाँ, बाकी थोड़ा एकांत में इसलिए बैठा जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन इसलिए किया जाता है कि काफी समय से हमारी मन बुद्धि को भटकने की आदत पड़ी हुई है, उसको थोड़ा एजुकेशन देने की जरूरत है, इसलिए दिन भर में जितना टाइम निकाल सको वैसे 8 घंटा कर सको तो करना चाहिए। देखो जो म्यूजिशियन लोग हैं उन्हें अपना रिहास रोज करना पड़ता है क्योंकि वो भूल नहीं जाए, जो मिलिट्री में हैं पुलिस में हैं उन्हों को अपने शरीर को ठीक रखने के लिए रोज दौड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, आदि आदि। अगर हमें एक अच्छे राजयोगी बनना है तो हमें कम से कम 8 घंटे का चार्ट बन सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 4 घंटे का तो बनाना ही चाहिए। और वो कैसे बन सकता है, सुबह में समझो 3 से 6 के टाइम में आप 2-2.5 घंटा मेडिटेशन कर सकते हो, फिर दिन भर में बीच बीच में आप 15-15 मिनट का टाइम निकाल के कर सकते हो, सायं 6:30 से 7:30 एक घंटा कर सकते हो, रात्रि को सोने के पहले आप 1/2 घंटा कर सकते हो, तो ऐसे करके कम से कम 4 घंटा करेंगे तो भी बहुत अच्छा है।
दीदी, आपसे ही एक सवाल आया है और आपके लिए ये सवाल है कि आपका कनेक्शन भगवान से बहुत सुंदर है और ऐसा ही कनेक्शन मुझे लगता है यहाँ सभी बनाना चाहते हैं। यस यस, सो सवाल ये है दीदी, गॉड के डायरेक्शन को किस तरह से हम समझें और उनकी बातों को किस तरह से हम कैच करें, हमें कैसे पता चले कि ये गॉड का डायरेक्शन है या मेरे मन का डायरेक्शन है?
भगवान से बात करना बहुत सरल है, क्योंकि भगवान के अंदर इंसान की तरह कोई मिलावट नहीं है, भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान आपके सवाल का एकदम क्लियर कट जवाब देता है। सवाल आपका ये है कि आपको मालूम कैसे पड़े कि ये भगवान ने हमको जवाब दिया। आपकी माँ आज खुश है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले तो आपको मालूम चलता है नहीं चलता है, चलता है नहीं चलता, चलता। आपका फ्रेंड आपसे कुछ भी नहीं बोले, आपके सामने आकर के बैठे, उसका चेहरा समझ करके आपको मालूम चलता है नहीं चलता है, वो खुश है कि नहीं खुश है। एक्चुअली स्पीकिंग ये लैंग्वेज तो सारे बैरियर हैं। फीलिंग अनुभव करना, इसके अंदर सारी ताकत है। जब आप बाबा के सामने बैठेंगे और बहुत दिल के रियल निश्चय के साथ कि ये मेरे पिता हैं या परमात्मा हैं या मित्र हैं, आप उनको अपनी बात अच्छी तरह से कहे वो जरूरी है, और वो कहने के लिए लिखना जरूरी है। और आप लिखो तो सबसे पहले लिखो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे जीवन साथी बाबा, और मैं आपको बहुत याद भी करता प्यार भी करता बाबा, मेरा एक सवाल है। लिखो बाबा को सवाल, फिर वो रख करके आप बड़ी एकाग्रता के साथ जिसको भी बिलीव करते हैं, चाहे पॉइंट है, चाहे कोई फोटो है, चाहे कोई मूर्ति है, अपनी बुद्धि को फोकस करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए, और फिर आपके मन में विचार के रूप में, संकल्प के रूप में जवाब आएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सहज तरीके से होगा। अब मैं अपना पर्सनल एक अनुभव सुनाऊं। यहाँ ज्ञान सरोवर हमको ये रिट्रीट के लिए आना था, तो जब मैं निकल रही थी मैंने भगवान को पत्र लिखा, सारा समाचार सुनाया, ये भी सुनाया ये यूथ सेक्रेटरी आने वाली, आने वाले, वो आने वाले, ऐसा ऐसा प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम स्केड्यूल दिया। बाबा ने बहुत सरस, बहुत सिंपल तरीके से कहा, बच्ची सब कुछ बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक तरीके से होता रहेगा, जाओ। बस इतना मुझे भगवान ने कहा। मेरे साथ जितने रहने वाले हैं उनसे पूछो, यही अनुभव है कृति बहन जी, सब कुछ बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक तरीके से हुआ और बहुत वंडरफुल हुआ। भाई आपका अनुभव ऐसे ही है? ये दिल्ली से हमारा रोहित भाई ऐसा ही है, अंशुया बहन ऐसा ही है, बस वो भी आप लिख लो। अरे तब से निकली हूँ, रोज दिन में 50 बार अपने आप निकल रहा है, सरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से होता रहेगा, हो रहा। आप ये मत सोचो हमारे साथ ये कैसे होगा, ये हम सबका बर्थ राइट है। और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको भगवान जल्दी जवाब देगा, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, आप भी नया ट्रेंड हो रहे हो, तो वो आपको जल्दी हाथ देगा, वो आपको जल्दी साथ देगा, वो आपको बहुत जल्दी मदद करेगा।
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं।
मेरे को 7:30 दूसरी क्लास है, आप मुझे छुट्टी दो तो मैं जा सकती हूँ।
दीदी यहाँ से छुट्टी मिलनी चाहिए,
यहाँ जो लोग सभी हमारी सेवा में हैं, जो इतनी सेवा दे रहे हैं, तो अभी 7:30 को उनको मुझे क्लास देने लिए, मिलने लिए जाना है, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है। आप सभी मुझे छुट्टी देंगे ने? मैं जाऊं ना?
द मेन थिंग इज दीदी, आपने हमें भगवान से इतना नजदीकली जोड़ दिया है कि अभी जो सवाल हमें
आज से करने, अभी हम कल सवेरे उठ के गॉड से करेंगे.
वेरी गुड.
सो थैंक यू वेरी मच दीदी, और आपका तहे दिल से इसलिए धन्यवाद कि इतने समय से हम ये सोचते थे गॉड यानी बहुत ऊंची बात है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, और आपने तो ऐसा कर दिया कि गॉड इज माय फ्रेंड, ही इज बिहाइंड मी.
अपन कल सुबह हरेक अपनी डायरी लेकर के आओ. आएंगे? आप डायरी पेन लेकर के आओ, गिफ्ट में मिली है. कल सुबह मैं आपको मेडिटेशन भी कराऊंगी, और किस विधि भगवान से लिखा जाता है वो भी आपको सिखाऊंगी, कैसे भगवान आपको जवाब दे रहा है.
थैंक यू दीदी, ये तो हमारे लिए बोनस हो गया. यस, सो बहुत तालियों के साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद.
अगला सवाल अशोक भाई जी से. भाई जी, एक क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता हमारे फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करती है.
ओम शांति. आध्यात्मिकता लाने से जीवन का सर्वांगिक विकास होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा के अंदर जो उनकी जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज जीवन में धारण होती है, और वैल्यूज की परसेंटेज बढ़ती है. तो जब वैल्यूज की परसेंटेज बढ़ती है तो फिनेंशियली, सोशियली और हर प्रकार से हम प्रोग्रेस को पा सकते हैं. इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भी हम आध्यात्मिक.
एक्सक्यूज मी अशोक भाई, जो भी उठ रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हम ठीक 7:30 सत्र पूरा करेंगे, थोड़ी सी देर रुक करके आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा.
तो आध्यात्मिकता से हम सब जगह पे प्रोग्रेस पा सकते हैं. ओम शांति.
शांति. कृति दीदी जी से ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक किसी ने पूछा है कि अगर पास्ट लाइफ में हमारे साथ बहुत गलत हुआ है तो बार बार मन में वही पास्ट की बातें याद आती हैं, तो इससे कैसे निकले, पास्ट को कैसे भूले?
जो बीत चुका है वो सच पूछे तो हमारे हाथ की बात नहीं है. गलती चाहे हमारी रही चाहे गलती औरों की रही, लेकिन जो बीत चुका है उसे अभी रिवर्ट नहीं किया जा सकता है. ये सबसे बड़ी जीवन की एक करुणता है, और इसीलिए जो हो गया है उसमें किसी के भी दोष को बार बार याद रखने के बजाय, चाहे अपना दोष चाहे दूसरों का दोष, इससे और ही ज्यादा हम डाउन होते जाएंगे. या जिसकी गलती को हम सोच रहे हैं उसकी गलती को लेकर के बार बार उस व्यक्ति के लिए भी हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहेंगे. इससे या तो एक बदले की भावना अंदर पैदा होगी, और या ये भाव आएगा कि हम कितने मजबूर हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. और ये दोनों ही नेगेटिव बातें हमें मानसिक रूप से डाउन करेगी. पास्ट को भुलाने के लिए अब तक जो भी अनुभव में बातें आई हैं लोगों के बीच रहते हुए, उसमें बेस्ट तरीका हमने ये पाया है कि जो बात आपको बार बार खा रही है, पिंच कर रही है, पिछली जो बात आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, पीसफुली एक बार एकांत में बैठिए, वो बात को लिख दीजिए. ये साइकोलॉजी की थियोरी कहती है कि जो चीज अंदर बार बार खाती है वो मन को भी खराब करती है, उसको किसी भी तरह से बाहर निकालना, एक आउटलेट देना बहुत जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति में आपका फेथ है शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी ऐसी बातों को शेयर करने से और ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती है अगर सामने वाला हमें ठीक नहीं समझेगा. तो बेस्ट तरीका यह है कि आप एकांत में जाइए, पीसफुली बैठिए, जो जो भी जिसके लिए आपके मन में जो बात आ रही है, किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए बड़ा अंदर में जोश आ रहा है, वो सारी बातें पत्र में लिख करके एक आउटलेट दे दीजिए। लिखने के बाद उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार पढ़िए। जब अपनी बात को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जिस बात के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, इससे तो कई बुरी बातें कईयों के जीवन में हुई हैं, तो भी आज वो सबको ओवरकम करके आगे बढ़ रही हैं। जितना बड़ा मैंने इस बात को समझा है, इससे तो कई बड़ी बातें कईयों के जीवन में भी है। बार बार उसे पढ़ी, आठ दस बार पढ़ेंगे ना, यू विल कम टू नो कि कंपैरेटिवली मैं जितना बड़ा बनाया है, बात इतनी बड़ी नहीं है। और फिर उस बात को टियर अप कर दीजिए, फाड़ दीजिए या जला करके खत्म कर दीजिए और अंदर से रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह जैसे अभी आदरणीय चंद्रिका दीदी कह रही थी, परमात्मा से भी वो बात उसको सौंप दीजिए कि जो भी मेरी पास थी बीत चुकी है, इट्स नाउ ओवर, आज के बाद मेरे जीवन में ये बात कभी नहीं आवे, इसके लिए फ्रॉम माय साइड आई ऑलवेज बी केयरफुल। ये चीजें हमें अंदर से एकदम लाइट करती है।
थैंक यू वेरी मच दीदी। एक बहुत लोगों ने एक कॉमन क्वेश्चन किया है, जो लास्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑफिस में जब हम कार्य करते हैं तो ऐसा सिचुएशन आता है जहां हम देख रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सफल होना चाहते हैं, और मैं उसे फॉलो भी नहीं कर सकती और मैं उसे रेसिस्ट भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं रेसिस्ट करती हूं तो वो मेरे खिलाफ जाते हैं, मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात बनाते हैं जिससे मैं बुरी बन जाती हूं। तो ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन क्या हो, करना क्या चाहिए? क्या उनके झूठ का साथ दूं, और अगर नहीं दूं तो कैसे अपने आप को उससे थोड़ा बचा के रखूं, क्या करना चाहिए? बहुत लोगों का ये सवाल है, क्योंकि इस सवाल के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि इसके कारण हमारे अंदर बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्सा हम उन पर तो दिखा नहीं पाते तो वो घर पर निकलता है। यस और नो? और फिर घर वालों का गुस्सा हम पर निकलता है।
ये सिचुएशन मैं समझती हूँ आज के समय में मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये तो समझते हैं कि सही बात क्या है और सही बात क्या नहीं, मतलब गलत क्या है, समझ तो आती है हमको, चाहे वो झूठ है चाहे वो करप्शन है, ये सब बातों का हमें पता चलता है। लेकिन जैसे बताया कि हम मजबूर हो जाते हैं कि सारे लोग इसी तरह चल रहे हैं, हम रेजिस्ट कैसे करें? मैं केवल अपने जीवन की ये धारणा आपको सुना रही हूँ। कितना भी झूठ और कितनी भी बातें आती हैं, आज तक झूठ के साथ हाँ में हाँ मिलाना, ये मैंने अपने जीवन में कभी नहीं होने दिया है। हाँ, इसके लिए मेरे पास बहुत चैलेंजेस आए हैं, इसके लिए बहुत बातें मुझे फेस करनी पड़ी है, बहुत बातों को मैंने सहन किया है। लेकिन एक बात मेरे जीवन में मैंने पक्की की है कि मुझे गलत का राह कभी न साथ देना है, न शॉर्टकट की सफलता के लिए मुझे गलत रास्ता अपना करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि शॉर्टकट से हम एक बार तो सफल होने का एहसास ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने योग्यता को डेवलप करने के बाद सफलता को नहीं पाया है तो जैसे धक्के से हम चढ़े हैं वैसे ही धक्के से हम गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी योग्यता को बढ़ाया है, भले मुझे ऊपर जाने में समय लगता है, मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क और सिंसियरिटी लगानी पड़ती है, लेकिन अगर मैंने अपनी सिंसियरिटी को डाल करके अपने को योग्य बना करके उस लेवल तक ले आया है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे पांव को कभी भी काट नहीं सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। टाइम बीइंग कोई काट रहा है ये अनुभव भी होगा, लेकिन मेरे इतने वर्षों का ये अनुभव कह रहा है कि परमानेंटली आपको कोई गिरा नहीं सकता है अगर आप अपनी योग्यता से आगे आए हैं. वन थिंग. सेकेंड थिंग कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें. जो बात आई कि अगर रेजिस्ट करते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है. अब रेजिस्ट करने के बाद या तो हमारी इतनी ताकत चाहिए कि हम वो चैलेंज को फेस कर सके. अगर वो हिम्मत नहीं है तो झूठ को साथ देने के बजाय मैं समझती हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि उस समय हम साइलेंट हो जाएं. हम उनके साथ जूझे भी नहीं, हम उनका सामना भी ना करें और हम उनको साथ भी ना दें. लेट अस बी साइलेंट फॉर दैट मोमेंट. जैसे लोग कर रहे वो करें ना, हम करें ना हम विरोध करें. तो साइलेंटली वो बात को पास, क्योंकि मेजोरिटी अगर कोई चीज को कर रहे हैं तो मैं कोई भी बहाना बना करके उसमें से साइड ट्रैक करके अपने को बचा लूं. और अगर आपका अंदर का सिक्स्थ सेंस इसमें आप यूज करेंगे तो आपको सेफ होने का रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा. ये अनुभव कहता है क्योंकि मैंने केवल स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं, मैंने हमारी 25-27 साल से यूथ विंग चल रही है तो उसके हिसाब से स्पिरिचुअल लोगों के बीच और अन्य लोगों के बीच भी काम करने का मौका आया है. 10 साल मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पर मैं वहां जाती थी और मॉरल एजुकेशन वहां मैंने बच्चों के साथ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया. मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप सेफ होना चाहते हैं, इफ योर एटीट्यूड इज टू बी सेफ, आपका सिक्स सेंस आपको कहीं से भी सेफ करेगा. इसीलिए ऐसे मौके पर मूंझने के बजाय, कंफ्यूज होने के बजाय अपने सिक्स सेंस को यूज कीजिए. कम आउट ऑफ द सिचुएशन, साइलेंट हो जाइए या अगर आप में ताकत है तो बोल्डली उस सिचुएशन को फेस कीजिए. दीज आर द ओनली ऑप्शंस ओपन फॉर अस. जिसने भी पूछा है, आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? ओके.
अभी आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र को हम समाप्त करेंगे. हम हमारे सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव डॉक्टर एएस पटेल जी, आदरणीय कृति दीदी, आदरणीय अशोक भाई जी, सभी का करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करते हैं. आपने बहुत अच्छे प्रश्नों के जवाब दे करके हम सभी की जिज्ञासाओं को शांत किया. वैसे तो प्रश्न बहुत सारे थे और हमने बहुत से लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न रह गए हैं. तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपने जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे, तो आपको अपने प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिलता जाएगा. तो आप सभी अपने
इसका एक और उपाय हो सकता है. अभी कल का पूरा दिन हमारे पास है तो कल के जो हमारे सत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, इसकी प्लानिंग कर लेंगे.
अभी 2 मिनट सभी प्रभु स्मृति में बैठेंगे.
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं. जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा